नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इंदौर को लगातार आठवें साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। सूरत को दूसरा स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। बिहार सरकार ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया। केरल और कर्नाटक के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश से पैरा एथलीट की पा मेरो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले अरुणाचली बन गए हैं। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने लास वेगस में फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम में मैग्नस कार्लसन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने देशवासियों से देश को स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2025 में देश स्वच्छता और आस्था का अद्भुत संगम देखेगा।
स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा।
मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार आठवें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। सूरत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नवी मुंबई को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा, उसके बाद चंडीगढ़ और मैसूर का स्थान रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद का पहला स्थान मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। बिहार सरकार ने राज्य में सभी उपभोक्ताओं को अगले महीने की पहली तारीख से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में जयपुर के पास आयोजित सहकारिता तथा रोजगार उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत निर्मित 24 गोदामों और 64 मोटे अनाज के विक्रय केंद्रों का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने 58% ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारिताओं की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की।
8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी कल ही पश्चिम बंगाल में भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत जल्द ही पूरी हो सकती है। श्री ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और प्रस्तावित समझौता अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौते के अनुरूप भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इंडोनेशिया में पूरी पहुंच मिली हुई है और भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। इराक में अलकुट शहर में एक हाइपरमार्केट में आज लगी भीषण आग में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया है कि इमारत और मॉल में मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। इस बीच घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। भारत ने खसरा और रूबेला के प्रकोप से निपटने में बोलिविया की सहायता के लिए 3 लाख टीकों की खुराक और आवश्यक सहायता सामग्री भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अपने अल्प विकसित और विकासशील देशों के साथ खड़ा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने ऊर्जा उपलब्धता सामर्थ्य और स्थिरता की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। नई दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत ने उन देशों की सूची का विस्तार किया है जहां से वह ऊर्जा आयात करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस साल के अंत तक देश की लॉजिस्टिक लागत घटकर 9% रह जाएगी। आज नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा है कि लॉजिस्टिक लागत में कमी से भारत का निर्यात 1.5 गुना बढ़ जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार प्रदूषण और यातायात जाम को कम करने के लिए प्रयासरत है। कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में गेट के बाहर हुई भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल क्रिकेट टीम को जिम्मेदार ठहराया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी ने आईपीएल चैंपियनशिप जीतने का जश्न मनाने के लिए आवश्यक अनुमति और लाइसेंस नहीं लिया था। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के कथित घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एससीबी से जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर इस योजना के तहत कोविड-19 के दौरान 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने कल तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर के जेनामणि ने बताया है कि अगले 3 दिनों के लिए केरल माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। आज बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर गरज के साथ बिजली चमकने के साथ मध्यम बारिश जारी रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों ईस्ट कमेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, अपर सियांग, ईस्ट सियांग और अंजाव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से निर्देशित उनका दूरदर्शी, समावेशी और पारदर्शी नेतृत्व अरुणाचल प्रदेश की परिवर्तनकारी यात्रा के लिए प्रेरक शक्ति रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित अरुणाचल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आधिकारिक रूप से बालतल और पहलगाम मार्गों पर तेज बारिश के कारण आज तीर्थ यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया गया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स कुछ देर पहले 200 अंकों की गिरावट के साथ 82,443 पर था। पैरा एथलीट किपा मेरो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले अरुणाचली बन गए हैं। मेरो ने हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न 7वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपना स्थान पक्का कर लिया। और शतरंज में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने लॉस वेगस में फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह कर ली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।